SBS हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बराल। आइए आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ भारत में मेवाती घराने के जाने माने गायक पंडित संजीव अभ्यंकर जी के साथ, जिन्हें 1999 में हिंदी फिल्म गॉड मदर में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला और 2008 में उन्हें कुमार गंधर्व नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पंडित जसराज जी से संगीत की शिक्षा ली। वो सिर्फ 11 वर्ष के थे जब उन्होंने 2 घंटे की परफॉर्मेंस देकर सबको हैरत में डाल दिया और उन्हें वंडर बॉय कहा जाने लगा। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बडोटकर जैसे दिग्गज गायक उनकी गायन कला से बेहद प्रभावित थे। ये पूछने पर कि पूना में रहते हुए पंडित भीमसेन जोशी जी से न सीखकर पंडित जसराज जी के पास ही क्यों गए संगीत सीखने, तो उन्होंने बताया,
मेरी माँ संगीत मार्तन पंडित जसराज जी की स्टूडेंट थी सिंस आई वॉज लाइक 11 ईयर्स ओल्ड एंड शी न्यू दैट मेरा जो सांगीतिक स्वभाव है वो इट ओनली मैचेस दैट टू ऑफ संगीत मार्तन पंडित जसराज जी से। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि सिर्फ गुरु बड़े होने से फायदा नहीं होता है या गुरु का नाम है बहुत फेमस है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, शिष्य की जो गाने की प्रकृति है वो मैच होना भी बहुत, वो गुरु से मैच होना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसा हम लोग शास्त्रीय संगीत में सोचते कि शिष्य ही गुरु मतलब गुरु चूज करते हैं शागिर्द को, तो ऐसा सिर्फ नहीं होता है, शिष्य को भी सही गुरु को चूज करना चाहिए, अदरवाइज वो मिसमैच होता है। तो एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, क्रिकेट में जैसे समबडी इज अटैकिंग बैट्समैन और उसको डिफेंसिव बैट्समैन के पास सीखने के लिए भेजा तो वो फेल हो जाएगा, और जिस बैट्समैन की टेम्परामेंट डिफेंस की है उसको आप अटैकिंग बैट्समैन के पास सीखने के लिए भेजेंगे तो वो फेल हो जाएगा। सो सही टेम्परामेंट के गुरु शिष्य मैच होने चाहिए। सो दैट इज हाँ, ये इसलिए इतना विस्तृत इसलिए बताया कि मैं जब गुरुजी को गाना सुनाया, मेरे गुरुजी मतलब पंडित जसराज जी, तो उनका पहला क्वेश्चन था कि ये तो, पहले तो बोले कि ये तो तीसरे जन्म का गाना गा रहा है, मेरे सामने ही ये फर्स्ट बर्थ का गाना नहीं, इज अ प्रोडिजी, इज अ आपने तो गवैया पैदा किया, ऐसा उनके वर्ड्स थे मेरे पेरेंट्स को, अरे गवैया पैदा किया आप लोगों ने। एंड देन सेकंड लाइन वाज कि अरे पूना में भीमसेन जी है, पूना में पंडित जितेंद्र अभिषेक जी है, तो मेरे पास बॉम्बे क्यों भेज रही हो, माँ को पूछा उन्होंने, क्योंकि ही वॉज इन बॉम्बे, तो पूना का अच्छा बड़ा सारा घर एकदम कम्फर्ट छोड़ के फिर बम्बई में उसको आके रहना पड़ेगा, मेरे साथ घूमेगा, तो वाई डोंट यू सेंड हिम टू देम। तो माँ ने उनको कहा कि नहीं नहीं, उसकी गाने की प्रकृति आपके प्रकृति से मिलती है, तो अगर आप सिखाएंगे तो ही वो फुल टाइम करेगा, अदरवाइज ही हैज गुड ऑप्शंस ऑफ एकेडमिक्स। मेरा आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज।
आपकी बात सुन के बार बार मन में आ रहा है कि गुरु के साथ प्रवृत्ति मिलना, पूना में भीमसेन जोशी जी थे और बम्बई में जसराज जी थे, तो दोनों के स्टाइल में कहाँ फर्क था जो प्रवृत्ति आपकी पंडित जसराज जी से मिल रही थी?
मैच
उनको मैं कैसे समझूं ये बात?
हाँ बिल्कुल, देखिए क्या तक ये संगीत सब्जेक्टिव मैटर है, मतलब इसको किस तरह से अप्रोच किया जाए उसका कोई एक सही गलत तरीका नहीं है, अपने अपने प्रकृति का तरीका है। मतलब उसको बताऊंगा कि भीमसेन जी का जो गायन था वो एग्रेसिव गायन था, अटैकिंग गायन था, दोनों अपने अपने प्रकृति, जैसे कहते ना कि ये इसमें कोई समीक्षा नहीं होती है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ग्रेट ही होता है, लेकिन एक अप्रोच था कि एग्रेसिव अप्रोच होता है। और गुरुजी का जो अप्रोच था, मतलब मेरे गुरुजी पंडित जसराज जी का, उनका अप्रोच ऐसा कि वो बोलते थे सिखाते हुए कि बेटा स्वरों को सहलाओ, उनको बहलाओ, प्यार करो।
अच्छा।
तो भक्तव उनका अप्रोच थोड़ा सा रोमांटिक अप्रोच था, या तो अभी रोमांस में कैसा होता है, आप उसको श्रृंगारिक देखेंगे तो श्रृंगारिक है, आप भक्ति देखेंगे तो हम भगवान की भी तो पूजा जिस तरह से करते हैं ना, मूर्ति, तो श्रृंगार दोनों तरह से होता है, एक तो व्यक्ति को देखेंगे फिजिकल श्रृंगार हो जाता है, और शक्ति को देखेंगे तो वो आध्यात्मिक श्रृंगार हो जाता है। तो मेरे गुरु जी का गायन जो था वो एक उसको कहते हैं ना सरेंडर और प्यार के अप्रोच का गायन था। तो अलग अलग लोगों का गायन अपने अपने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता था। भीमसेन जी का गायन एग्रेशन का था और उनको बहुत जचता था, तो उनके पास उसी ने जाना चाहिए जिसकी प्रकृति वो है गाने की। सो मेरी माँ ने उनके पास मुझे सीखने के लिए भेजने का निर्णय किया, और उन्होंने पूछा कि एकेडमिक्स में कैसे है, ये इंजीनियर वगैरह बन सकता है क्या? सो माय पेरेंट्स सेड कि आराम से बन सकता है इंजीनियर, तो बोले नहीं नहीं अगर मैं सिखाने वाला हूँ उसको तो पूरा समय करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली बॉर्न टू सिंग, ही हैड दैट मच कॉन्फिडेंस इन मी व्हेन आई सैंग इन फ्रंट ऑफ हिम। आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, मैं 9th ग्रेड में था
आपने उनके विश्वास को पूरा जिया और वो
जी,
जहां भी हैं उनको आपके ऊपर मान रहेगा हमेशा।
एकदम जी
और
जी जी
संगीत में जो राग होते हैं वो एक तरह से हम कहते हैं टेम्पलेट है, और जो इम्प्रोवाइजेशन है उसको हम लिंक कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी से करें या डिवोशन से करें, कि राग तो एक फॉर्मूला हो गया।
फॉर्मूला कर, मैं उसको कहता हूँ कि राग एक सब्जेक्ट है,
जी
मतलब हम गपशप करते हैं तो कोई सब्जेक्ट लेते हैं और गपशप करते हैं, करेक्ट। एक जैसे अगर आपको गा के बताना है तो सा गा मा धा नि सा नि धा म ग रे नि सा, ये बागेश्वरी राग के सुर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो अभी सब्जेक्ट के अंदर मैं कितनी कितनी बातें कर सकता हूँ कंप्यूटर के साथ, जैसे करते हैं ना गेम खेलते हैं आजकल के बच्चे, मतलब खुद टेनिस खेलते हैं और सामने कंप्यूटर उनके साथ खेल रहा है, सामने कंप्यूटर से कोई जवाब दे रहा है, ये खुद उनके साथ खेला है। तो वैसे मैं सोचता हूँ हर वक्त रागों के स्वर के बीच में कैसे खेला जा सकता है। सा ग म ध नि धा म, अभी कंप्यूटर से जवाब आएगा, सा नि सा र नि सा र, फिर मैं उसको एक आंसर करूँ, म ग रे ध नि सा म, फिर कंप्यूटर नि र नि सा म ग रे नि ध, उसको मेरा जवाब धनी ने सा सा ग म नि। तो इस तरह से सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब करके वो 5-6 स्वर के अंदर हम एक पूरा चित्र बनाते जाते हैं। और जैसे गपशप होती है, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, आपने उसके ऊपर उसी सब्जेक्ट में मुझे कुछ ज्ञान दिया, उसके ऊपर मैंने भी अपना कोई इंटरप्रिटेशन बताया, फिर आपने उसी सब्जेक्ट पे और चार चीज़ें बताई, ये गपशप जैसे होती है वो सुरों को बीच के गपशप, ऐसे मैं इसको कहता हूँ। सो व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक, व्हाट हैपन्स, तो रागों के 5-6 स्वर इज अ सब्जेक्ट, उसके अंदर जो कलाकार होता है वो अलग 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 चित्र बनाता है, खूबसूरत चित्र बनाता है, और
जी
उसको एस्थेटिकली प्रेजेंट करके एक जैसे जैसे कोई एक स्टोरी लाइन बता रहा है, ऐसे एक राग की स्टोरी बनाता है 40-30 मिनट 40 मिनट, और उसको इंटरेस्टिंग इतनी बनाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि आधा घंटा कब खत्म हो गया। एंड दैट इज अ स्किल वन हैज टू एक्वायर,
बिल्कुल
और वो सब में नहीं होता, इसलिए हमको सुनाने के लिए बुलाते हैं मेलबर्न।
क्योंकि तब जो है जो एक जो संगीत जिसको हम एंटरटेनमेंट कह देते हैं वो कब डिवोशन बन जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। सही
कर
कह रहे हैं।
मतलब ये अच्छी आपकी बात थी कि एंटरटेनमेंट इस म्यूजिक से होता ही है, बट
जी
मेयर एंटरटेनमेंट के लेवल पे ये रहता नहीं, ये अनुभव की तरफ जाना चाहिए, ऐसी कोशिश रहती है हमारी कि पहले
तो
तो ये एंटरटेनमेंट के लेवल से ही चलेगा, लेकिन जाते जाते वो कब अनुभव बन जाए।
जी और वो पावर है आप जैसे लोगों में जो इम्प्रोवाइजेशन से हमें उस डिवाइन दुनिया में ले जाते हैं।
ये
तो
कोशिश
अभी
रहती है
आपने एक झलक सुनाई बागेश्वरी राग की,
जी,
आपका कोई पसंदीदा राग भी
बागेश्वरी है ना।
है? क्यों बागेश्वरी
बट तो आपको आपको एक,
क्यों
एक
पसंद है, क्यों
जी
पसंदीदा है?
हाँ, तो उसका एक थोड़ा सा विस्तृत आंसर ये दूंगा कि ऐसा ही नहीं कि बागेश्वरी पसंद है,
जी
बट कुछ कुछ हर एक राग में ना एक रस होता है, एक अट्रैक्शन होता है,
जी
एक 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 जिसको होता है कि यूनिवर्सल अपील होता है। तो जैसे यमन राग है, बागेश्वरी है, तोड़ी है, भैरवी है, पुरयधनश्री है, ऐसे काफ़ी सारे मालकंस है, ऐसे काफ़ी सारे राग है जिनमें एक यूनिवर्सल अपील है, और वो जिसको क्विकली रंग भरते हैं, ये हर एक के लिए अलग हो सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हर मरून कलर की साड़ी है ना, वो भारतीय स्त्री को बहुत पसंद है, किसी के भी वार्डरोब में मरून कलर की साड़ी तो होगी होगी, क्योंकि वो कलर ऐसा है कि किसी के ऊपर भी अच्छा जाता है। तो वैसा वैसे रागों के जो कुछ कुछ रागों के स्वर इतने अट्रैक्टिव होते कि आप एवरी पीरियड के लिए आप गाएंगे तो मजा आता है, रस आता है। सो वो कॉम्बिनेशन ज्यादा हिट होते, दैट्स वाई दे आर मोर पॉपुलर ऑन द कॉन्सर्ट प्लेटफॉर्म ऑल्सो। काफी है ऐसे 25-30-40 बता सकता हूँ कलर्स की, अरे ये एकदम हिट हो जाते हैं, हर वक्त लोग गाते हैं, तो इसलिए लोग उसको प्रीफर करते हैं। बट बाकी के रागों में हर एक राग में अपना अपना एक रस होता है, रंग होता है।
पंडित जी के साथ और भी बहुत सारी बातें की हैं। SBS हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार और हम बातें कर रहे हैं भारत में मेवाती घराने के जाने माने गायक पंडित संजीव अभ्यंकर जी के साथ।
बहुत ही मुश्किल कहें तो कौन सा राग हो सकता है उसके साथ बहने में। कोई ये है कि किसी के लिए टाइम लग जाता है उसमें डूबने में?
नहीं नहीं है, क्योंकि ये आदत की बात है। मतलब हम ऐसी गलियों में जिसको घूमने की आदत है जहाँ पे अंधेरा है लेकिन वो गलियाँ उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको हाईवे पे जाने की आदत है उसको गलियों में गाड़ी चलाने को बोलो तो यू विल बी टेंस्ड। सो आई स्ट्रांगली से कि कोई भी आसान राग नहीं है और कोई भी मुश्किल राग नहीं है। आप उसमें स्किल डेवलप करते हो और आदत बनाते हो वो गाने की तो आपके लिए वो आसान चीज हो जाती है, लेकिन आपके लिए वो अगर आपने संस्कार नहीं की है, सुने नहीं है, बहुत रियाज नहीं किया उसका, और ये सब रागों के लिए ऐसा नहीं होता ना, तो कोई भी एक राग बोलिए आपकी कोई फलाने घराने में ही गाया जाता है, दूसरे घराने में जाते नहीं गाया जाता है, तो वो उसके नए सीखने वाले बच्चे गा ही नहीं पाते अगर वो सब बहुत मुश्किल होता तो। मतलब कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि मिश्र राग जो जोड़ राग है जैसे कामोद नट है या तो नट मल्हार है या केदार नट है या ऐसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशन राग सब सब घराने में नहीं गाए जाते, तो अगर ये राग ज्यादा मुश्किल होते हैं बागेश्वरी रागेश्वरी से तो उस घराने में जिन जिन जहाँ ये सिखाया जाता है उसके नए नए बच्चे नहीं गा पाते इसको। हर कोई गा पाता है वहां पे ट्रेनिंग के बाद। सो ऐसा नहीं है कि कोई राग आसान है कोई राग मुश्किल है, ऐसा नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ आपकी प्रतिभा, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है और उसके बाद आप उन गलियों में कितना घूमते हैं और आप आपको कौन सा राग कितना टच करता है, इट्स हाईली सब्जेक्टिव। तो मेरे लिए कोई भी राग मुश्किल नहीं है। फॉर मी पर्सनली आई डोंट फाइंड एनी राग मुश्किल एंड पर्सनली आई डोंट फाइंड एनी रागा मोस्ट इजी।
तो जब आप सिखाना शुरू करते हैं अपने एकेडमी में तो सबसे पहले आप बच्चों को कौन सा राग सिखाते हैं?
भैरव, क्योंकि उसमें सातों स्वर है।
जी
सातों स्वर है
जी।
तो रियाज करने के लिए ऐसा मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि सब सुनने वालों को समझ में आए। सा रे ग म प ध नि सा सा ने ग प म ग रे सा, ये सीधा जाता है, इसमें कोई चलन नहीं है, मतलब ऐसा ही करना है वैसा करना है, इसके रूल्स कम है इसमें। तो इसमें क्या होता है रियाज में सीधा है ना, सारे रे ग म प प ध ध नि नि सा, ये पैटर्न बनाने में आसान होता है। रे सा ग रे म ग प म ध भ नि ध सा नि रे सा, सारे ग रे ग म ग म प म प र प ध नि ध नि सा, सारे ग म रे ग म प ग म प र म प ध नि प ध नि सा, सा सा रे ग रे रे ग म ग ग म प म म प र प ध नि ध ध नि सा, सारे ग सारे म ग म रे ग रे ग म रे ग प म प ग म ग म प ग म ध प र म प म प र म प नि ध नि प ध प ध नि प ध सा नि सा ध नि सा ध नि रे सा रे नि सा नि रे नि सा ध नि प र म प ग म रे ग सा रे नि सा नि रे सा ग रे म ग प म ध म नि ध नि रे नि सा। ये जो पैटर्न्स है मतलब 1 2 1 2 3 मतलब सारे सारे ग 1 2 3 1 2 3 4 सारे ग सारे ग म 1 2 1 2 3 1 2 3 4 सारे सारे ग सारे ग म रे ग म रे ग म प ग म ग म प ग म प। इसको आप रियाज करने के लिए क्योंकि ये सीधा जाता है सारे ग म प ध नि सा सारे ध म म ग रे सा, तो इसमें आसानी होती है इसलिए भैरव से शुरू करते हैं और हम रियाज सिखाते बच्चों को ऐसा करो, फिर इसको एक बार पकड़ के बैठो और जितनी सांसें करो बस हर अलग अलग स्पीड में इसको लेते हैं और जैसे समझो कि बस 10 10 पूरी 10 सांस लेके एक ही तान हो रही है, फिर 10 सांस लेके दूसरी तान हो रही है, 10 सांस लेके तीसरी तान हो रही है। सो आई यूज टू प्रैक्टिस लाइक दिस भैरव फॉर 10 ईयर्स इन द मॉर्निंग 1 1.5 आवर्स 10 साल तक सुबह उठ के मैं पहले भैरव के रियाज करता था और ये लोअर ऑक्टेव डेवलप करने के लिए आई टू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग सनी दी, ये जो नीचे का सुर है वो जाने के लिए उसमें डेप्थ आने के लिए
जी क्या बात है।
आई यूज टू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग, तो उस तरह से सिखाते हैं। फिर आफ्टरनून में मूलतानी का राग है वो उसके सुर अलग है इसलिए वो आफ्टरनून में मतलब भैरव से अलग सुर है
जी।
सा ग म प म ग रे सा कोमल गंधार तीव्र मध्यम ये एडिशन हो जाती है उसमें। फिर और शाम को पूरिया, गम रे सारनी गम रे। तो ये भैरव, पुरियार, मुल्तानी, ये तीनों अलग अलग स्वरों के कॉम्बिनेशन देते। सो दिमाग को गाना बजाना है ना, गले का काम नहीं है बेसिकली, वो दिमाग का काम है, क्योंकि दिमाग कमांड देता है, वो गला फॉलो करता है। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए गाड़ी चलाना जैसा है ना, वो दिमाग का काम है। आप इंडिकेटर को बोलेंगे लिफ्ट करो तो इंडिकेटर लिफ्ट कर देगा। सो एंटायरली कंसंट्रेशन है जब हम गाड़ी चलाते हैं। स्पीड कितनी रखनी चाहिए, 40 का स्पीड लिमिट है। अभी ये ले, अभी सेंटर लाइन में कोई ब्रेक नहीं है तो मुझे लाइन क्रॉस नहीं करनी है। अभी एकदम से अचानक से स्कूल का जोन आया। सो एवरीथिंग इज, ब्रेन इज कैप्चरिंग एंड बॉडी जस्ट इज फॉलोइंग द कमांड्स ऑफ द ब्रेन व्हाइल यू ड्राइव। सेम प्रोसेस गाने में होती है कि मेरा दिमाग बोलता है कि यहाँ पे गंदा रहे तो वो गंदा लग जाता है।
आपके साथ तो बातें करती जाऊंगी तो मुझे लगता है समय की तो कोई सीमा होनी ही नहीं
तीन
चाहिए।
घंटे लगेंगे।
एक एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी आपने परफॉर्मेंसेस किए हैं, बचपन से आप करते आ रहे हैं, तो बचपन की बात तो मैं नहीं करूंगी, जो आपने 11 और 13 साल पे किया
जी
है।
ठीक है।
तो कई ऐसे अवसर आए होंगे जो आपके लिए यादगार बने हैं, तो
जी
कोई एक हमारे साथ साझा करें।
एक जो बोलता हूँ कि जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मतलब एज ए प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट, वो था 1991 अक्टूबर में। मतलब आई वॉज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब उस जमाने में 91 में सिर्फ दूरदर्शन हो, जो इंडिया में डीडी नेशनल वॉज द ओनली नेशनल चैनल, बाकी कोई चैनल आए नहीं थे। और संडे मॉर्निंग को एकदम प्राइम टाइम पे ये स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट करके आता था। तो तालकटोरा स्टेडियम में ये प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, और वो जो ऑर्गेनाइजर थे, आई वॉज ओनली 22, उस प्रोग्राम में सब लिजेंडरी आर्टिस्ट उस जमाने के, उनको फीचर किया जाता था। 20 मिनट का प्रोग्राम होता था, लेकिन वो ऐसा, उसको जबरदस्त व्यूअरशिप थी कि मतलब रेलवे में आप ट्रैवल करेंगे सेकंड क्लास में तो भी लोग आपको पहचानते, इतने लोग उसको संडे मॉर्निंग में दिखते थे। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि संजीव तुम इतने यंग हो कि मैं तुम्हारा सिर्फ भजन दिखाऊंगा, तो एकदम तैयार भजन अच्छा करके आना, और पहले एक राग गाना और फिर भजन गाना। और लेकिन आई 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 वॉन्ट शो योर क्लासिकल नहीं दिखाऊंगा तुम्हारा, मैं भजन सुनाऊंगा। पहले क्लासिकल किसी का, लेजेंडरी आर्टिस्ट का होगा, एंड यू आर ओनली 22। हाँ, सो आवर पॉलिसी डजेंट अलाउ यंग म्यूजिशियंस टू बी फीचर्ड फॉर 20 मिनट्स। तो लेकिन तालकटोरा स्टेडियम में मेरा प्रोग्राम इतना जोरदार हुआ कि उन्होंने मेरा पूरा क्लासिकल दिखाया 20 मिनट के लिए।
क्या
दे,
बात
दे, गेव मी द
है,
एंटायर एपिसोड, और
मतलब
भजन दिखाया ही नहीं, भजन दिखाया ही नहीं, पूर्वी राग दिखाया। एंड दैट मेड मी सो मच सो फेमस इन द एंटायर कंट्री। जो क्लासिकल के फील्ड के सभी लोग उसको देखते थे, आयोजक देखते थे। दैट प्रोग्राम वॉज माई करियर का सबसे हाईलाइटेड रहा। क्यों? क्योंकि मुझे फिर अपने गाने के ऊपर ही बस मेरा करियर बन गया। मुझे किसी को कुछ पूछने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अच्छा गाता हूँ। सो टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वॉज स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट,
वो एक
अक्टूबर 1991।
जी अवसर
वो
रहा।
100 सोनार के एक लोहार के वाला प्रोग्राम हो गया मेरे लिए।
क्या बात, हमारे लिए अब क्या सुनाएंगे आप?
मैं, चलो अभी ये आ रहा है होरी का समय, तो एक छोटी सी होरी सुनाता हूँ।
जी कुछ भी सुनाइए जो आप।
आज माए मोहन खेलत होरिया, आज माए मोहन खेलत हो रे, इत सब बालक उत सब युवती, संग राधिका गौरी, संग राधिका गौरी, मोहन खेलत होरिया जमाई, मोहन खेलत होरी।
क्या बात है, ये हमारे लिए यादगार बन गया, और
थैंक यू,
बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं।
बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।